Shanti, Shanti, Shanti. उपस्थित प्रिय आत्मन, आज डॉक्टर साहब आसिफ आए नहीं और हिंद भजन विषय तो बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन शायद शुरू में आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन उसको मैं समझा दूंगा। आसिफ जो विषय देते थे वो भी बहुत अच्छा होता था, उसमें भी डॉक्टर साहब के पटेल के सैनी के सहमति होते थे, इंद्रवदन के होते थे। तो आज भी जो विषय डॉक्टर साहब और इंद्रवदन दिया है, इसको खूब शांति से सुनना, बाद में इसका पता लगेगा, लेकिन अभी शायद करवा लगे। छल कपट क्यों? आज का जो विषय दिया है डॉक्टर सैनी और इंद्रवदन ने, एक छल कपट, आदमी सब कुछ समझता है, फिर छल कपट क्यों करता है? जानता है सब नश्वर है, जानता है, लेकिन फिर भी क्यों करता है? रामायण और महाभारत का वैज्ञानिक दृष्टि से कल्पना इतिहास है, विचार करके देखा जाए तो व्यास जी ने महाभारत में साफ साफ कह दिया है, साफ साफ कह दिया है, लाइट है ना, चल रही
लाइट,
अरे कोई बात नहीं, कोई लाइट के चल आ जाए, नहीं आए तो उसमें महाभारत में साफ साफ व्यास जी ने लिखी है। अगर अच्छी तरह महाभारत पढ़े तो आपको पता चलेगा, उसमें महाभारत में समय करके बात आई है और वहां एक उल्लेख व्यास जी ने बड़ा सुंदर किया है, मनुष्य तेरा भूत भी मैं जानता हूं, तेरा वर्तमान भी जानता हूं और तेरा भविष्य भी जानता हूं, लेकिन तुझे निष्क्रिय नहीं बनाना है, समस्याओं का मुकाबला करना है, इसलिए मैं जानते हुए भी अनजान रहूंगा, नहीं बताऊंगा। समय तुम्हें अपने आप सिखा देगा, रास्ता देगा, बता देगा। इस जगत की रचना में सबकी जरूरत है, एक नकारात्मक रोल भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रार्थना हम करें कि हम नकारात्मक न बने। इसलिए पहले समझ लीजिए कि ये जगत सत्य असत्य, मान अपमान, अच्छा बुरा, प्रकट होना अप्रकट होना, उठना गिरना, ये सब मिला के बना है। जरा विचार कीजिए, हर आदमी अपने जीवन को गहराई से देखे तो जिंदगी में, जीवन में असत्य के लिए कोई जगह नहीं है, छल कपट के लिए कोई जगह नहीं, फिर भी क्यों? व्यवहारिक उदाहरण, एक व्यक्ति झूठ बोलता है और वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर भी क्यों बोलता है? अगर आप किसी संस्था में परिवार को देखें, अपने संस्था को देखें, तो संस्था का एक व्यक्ति झूठा आचरण कर रहा है, फिर चाहता है कि मेरे जो सहायक हैं झूठ न बोले। संभव है कहीं आपको पता चले कि पिता झूठ बोल रहा है, लेकिन आशा रखता है कि मेरा पुत्र मेरे से झूठ न बोले। बड़ा भाई झूठ बोल रहा है, लेकिन आशा रखता है कि मेरा छोटा भाई मुझसे झूठ न बोले। पति भी आशा रखता है कि पत्नी झूठ न बोले। पत्नी भी आशा रखती है कि मेरा पति झूठ न बोले। झूठ का आचरण करने वाले भी झूठ को पसंद नहीं करते। कैसे नहीं पसंद करते? मेरा बेटा झूठ बोलता तो थप्पड़ मारता हूं। क्यों थप्पड़ मारता हूं? क्योंकि जीवन में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरी अपनी कोई मजबूरी है कि झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वास्तव में झूठ के प्रति मेरा कोई आदर नहीं है, असत्य के प्रति आदर नहीं है, घृणा के प्रति आदर नहीं है। मेरे सामने प्रश्न आता है, स्वामी जी जब तक मैं जिंदा हूं मेरे दोनों बेटे अलग नहीं रह सकते। बड़ी अच्छी बात है, तो हर बात चाहता है। फिर बड़े प्यार से पूछता हूं कि आप कितने भाई थे? कोई चार हैं, कोई दो हैं, पांच हैं, छह हैं। तो फिर पूछता हूं, आपके पिताजी ने कभी कहा कि तुम दोनों भाई या चार भाई अलग हो जाओ, ये अलग करने की कोशिश में कभी आपको उन्होंने मदद की? बिलाने की बात। आप मुझसे कहते हो कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बेटे अलग नहीं रहना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन आपका बाप भी तो यही कहता था, आप तो अलग हो गए, कहता था कि नहीं? कहे हाँ, आप तो अलग हो गए। हाँ स्वामी, चोरी के लिए कहीं कोई समाज में इज्जत नहीं है। इज्जत दान की है, चोरी की नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों? अब थोड़ा सा आपको इस जगत का इतिहास बताऊंगा, और ये होता है क्यों का सवाल नहीं, इट हैपन्स। वॉट आर रीजन्स? डोंट ट्राई टू सर्च द रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। जो है उसे समझने की बात करो, क्यों होता है उसकी बात न करो। इसलिए देयर इज नो आर्गुमेंट, वहां पर कोई तर्क नहीं है, ये होता है। अब क्यों होता है वो बताता हूँ आप, धीरे धीरे इसको समझिए। जगत की रचना बिना माया के नहीं हो सकती, और माया का अर्थ ही है, मां का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ है जो, जो नहीं है फिर भी हम मान लें। आप मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप स्वयं दूसरे का अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप किसी तरह से हानि उठाना नहीं चाहते, फिर भी दूसरों को हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? इस जगत की रचना में हजार में काम लोहित श्वेत कृष्णा, हमारी कथाओं का आधार है कि जगत की रचना में 24 ब्रह्मा को लगाया गया, आर्किटेक्ट इंजीनियर। पहले ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, लेकिन ये जगत स्वयं चलता है, उसका 24वां ब्रह्मा ने एक प्लानिंग की, एक व्यवस्था की। अब यहां पर क्यों का सवाल नहीं, इसे आप समझिए। आप भोजन करते हैं लेकिन कुदरती एक व्यवस्था है कि आपके भोजन में से ही खून बनता है, कफ बनता है, मलमूत्र बनता है। क्यों बनता है? बनता है, क्यों बनने का सवाल नहीं है, बल्कि बनता है। स्वामी जी, हमने तो मक्खन खाया था, हमने तो खीर खाई थी, फिर इसमें मलमूत्र क्यों होता? क्यों का सवाल नहीं, बनता है। इसलिए ऋषियों ने कहा जो बनता है उसको स्वीकार करो, तर्क की बात नहीं है। माया का जहां प्रसंग आया है तो बताया गया, आज मैं पुत्र के बिना जी नहीं सकता, लेकिन वही पुत्र मेरे विरोध में जाए, मेरे मान का हनन करें तो घर से निकाल देते। थोड़ी एक कड़वी बात है लेकिन माया की, मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं अपनी बेटी को बहुत मानता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन मैं हिंदू हूं, एक समाज है, समाज में भी मान सम्मान की मर्यादा है। मैं बेटी को बहुत ही मानता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी हिंदू पद्धति व्यवस्था में अगर शादी से पहले मेरी बेटी कुमारी माँ बने तो उसको हम नहीं स्वीकार करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? प्रकृति का नियम तो वही है, यही एक माया है। ये समझाऊंगा, बाकी प्रकृति के नियम में शादी मेरी बेटी मेरे सामने करे या अपने आप जाए, प्रकृति तो अपना काम करेगी। लेकिन एक व्यवस्था में धर्म है, एक व्यवस्था में धर्म है, एक व्यवस्था में सुख है, एक व्यवस्था में दुख है। आप मिलिट्री में हैं, इस देश पर कोई आक्रमण करे, उस व्यवस्था में जितने दुश्मनों को मारोगे तो परमवीर चक्र मिलेगा, वो धर्म माना जाता। और वही मिलिट्री का कैप्टन, सेकंड लेफ्टिनेंट या जो भी कर्म कोई भी हो, अगर गांव में आकर के मारता है तो धर्म नहीं है, भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये स्वीकार करें कि जो बिना किसी प्रभाव से आप जानते हैं वह धर्म है। यक्ष प्रश्न में भी एक प्रश्न उठाता, आप और हम किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी देश या प्रदेश में जन्मे, पुत्र या पुत्री के रूप में, लेकिन हर पुत्र पुत्री स्वभावतः सहजता से जन्म से सत्य और प्रेम के पक्ष में, कोई बच्चा असत्य नहीं बोलता, कोई बेटी झूठ नहीं बोलती, सबके अंदर प्रेम है, भाव है, बच्चों को देखिए, तो ये हमारा जो स्वभाव है वो सत्य और प्रेम का है। छोटे बच्चों को देखा है, उनको कितना सिखाइए लेकिन बोल देते, मेरे से बोलते महाराज जी पापा ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे बोल रहा, वो भी आके बता देते, तो स्वामी जी के सामने कहना ऐसा तो पापा ने कहा ऐसा, मतलब वो सच ही बताता है, लेकिन जो कहा है वो बता दो, आपको बता दो तो समझ जाएंगे। कई बार घर में बंदोबस्त फर्क होता है ना, तो आप लोग कहते हो कि भाई मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, गुरु जी के पास आएंगे तो साथ में छोटा लड़का लाएंगे। तो इतवार के दिन कई पिक्चर हाउस में 9 से 12 पिक्चर चलती है, तो बच्चे से कहते थे तो मिठाई खिलाऊं, मम्मी से मत कहना कि पिक्चर देखने गया। 12 बजे आश्रम में पहुंचेंगे, कौन पूछता है, गुरु जी का दर्शन करेंगे। और बच्चा पहले ही आके कहा पिताजी ने ऐसा कहा ऐसा कहा, मुझे मिठाई खिलाया, क्या अभी वो तो सत्य बोल रहा है। अब उसे झूठ न सिखाया जाए इसलिए जान तो मैं चुप हो जा, क्योंकि मैं कहूँगा तो उसको थप्पड़ मारेंगे और दबाएंगे, तूने ऐसा क्यों कहा, एक बात है तो आगे बोल देता पिताजी ऐसा किया ऐसा किया, एक बात है। तो ये आप ये समझिए, जो नहीं है उसी को माया। तो इसकी रचना हुई कैसे, एक सवाल उठता है। तो वो जो रचना है उसको आप स्वीकार करें। जैसे मैंने कहा कि आपके भोजन में से खून भी बनता है, मलमूत्र बन, मलमूत्र क्यों बनता है, बनता है क्यों का कोई सवाल नहीं, अब वहां तर्क है ही नहीं। आप दुखी कैसे हुए वो मैं बता सकता, क्यों मैं दुखी हुआ उसमें भी कर्म ही आएगा, क्यों कैसे कोई सवाल नहीं, कर्म का है। कि कुछ चीजों का उत्तर हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब आप पढ़ते थे, अब सब पढ़ते थे, छोटी छोटी क्लासेस में भी हमारी माँ ने जो कहा स्वीकार किया, हमारे पिता ने जो कहा स्वीकार किया, हमारे शिक्षक ने जो कहा स्वीकार किया। चलो आप स्कूल में गए, हिंदी मीडियम में गए, तो मास्टर कहता है का ऐसे लिखो। आप इंग्लिश मीडियम में गए तो कहा ए ऐसे लिखो। अब एक तर्क देता हूँ, हिंदी वाला कहता है मास्टर साहब मैं तो का ऐसे लिखूंगा, मैं जैसा बताता हूँ। मास्टर कहता है का ऐसे लिखो, कहता नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन वहां मानना पड़ेगा। अंग्रेजी में गए ए में, मास्टर कहता है ये ऐसे लिखो, आप कहो नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा। तो एक जात सोचिए तो सही, एक भाषा को सीखने के लिए हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक जो बताते हैं बिना तर्क के उसको स्वीकार, हाँ ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिखो, लेकिन उसकी मान्यता नहीं, क्योंकि समाज ने व्यवस्था ने इसकी मान्यता ये में नहीं दी है। एक बात बाकी आप लिख सकते हैं, समाज ने, हमारे समाज ने, अमेरिका इंग्लैंड की बात छोड़िए, नकल मत कीजिए, हमारे समाज ने हमारी कुमारी बेटी माँ बने उसकी मान्यता नहीं दी। बाकी प्राकृतिक नियम तो वही है। तो ये जो मान्यताएं हैं उन मान्यताएं को इसलिए स्वीकार करो कि जिस समाज में जो जन्मा है अगर समाज की मान्यता से अलग हो जाएगा तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ ये कभी पढ़ना, उसमें यही कहते हैं सबके लिए कहा है, सारे धरती कम में एक उदाहरण दिखा भारत की बात की, जबरदस्त धरती कब में अर्थक्वेक, जबरदस्त धरती कम में संभव है सारे मंदिर, सारी मस्जिदें, सारा चर्च धरातल में चला जाए, पाताल में चला जाए, उसका कोई आकार जमीन के ऊपर न रह पाए। लेकिन फिर भी अय हिंदू, तुम्हारी आस्था अय मुस्लिम भाई, तुम्हारी आस्था अय अंग्रेज, तुम्हारी आस्था हिंदू के आस्था से मंदिर बन जाएगा, कहीं राम का, कहीं कृष्ण का, कहीं शिव का, कहीं जो आपकी आस्था है। मुस्लिम के अंदर की आस्था से मस्जिदें बन जाएंगे, ईसाइयों की आस्था से चर्च बन जाएगा। वहां आस्था के बाद बाकी मंदिर बनाने से या मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से इस समाज की समृद्धि का लक्षण है। और जिसका आप मंदिर बनाते हैं उसके जीवन को देखिए तो कुछ प्राप्त हो। आप पैसे के बल पर तबला ला सकते हैं, पैसे के बल पर हारमोनियम ला सकते हैं, पैसे के बल पर मास्टर बुला सकते हैं, लेकिन कला तो सीखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए जब आदमी के अंदर भय आया तो भय से बचने के लिए आग से बचने के लिए अग्नि देवता का अपनी शक्ति से प्रकट किया। वायु से भय हुआ तो वायु देवता को किया। तो अगर आप वेद उठा के देखें तो ऋषि मुनियों ने जब देखा कि लोग भयभीत हो रहे हैं, इस भय को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से, सत वही है, एकम सत विप्रा, सत वही है, लेकिन उसका एक आकार दिया। हिंदू को भय हुआ तो एक ए आकार दिया, मुस्लिम को भय हुआ तो ऐसा किया। अरे मस्जिद क्या आकार ही है, भले अंदर मूर्ति न रहे, चांद तो देखते हैं, चांद नहीं दिखाई पड़े, तारीख बदल जाते तो आप कैसे कहते हो कि आकार की पूजा नहीं करते। पूजा करने का ढंग अलग, मस्जिद क्या आकार है, चांद क्या आकार है, चांद नहीं दिखाई पड़े तारीख बदल जाती। कोई भगवान बुद्ध में, कोई महावीर में, भगवान बुद्ध ने उंगली का निर्देश दिया, उंगली का भी एक निशान दिया, एक प्रतीक दिया। तो व्यक्ति के मन में जब भय आया, भय में से निकलकर निर्भय बने। और ऋषि मुनि बहुत चिंतक थे, फिलासफर थे, दार्शनिक थे। वो क्यों का सवाल नहीं है, वो दार्शनिक थे। और आज भी आपको बताऊं, जिस व्यक्ति में भय है, भय के दबाव से वो रुक जाता है, विकास नहीं कर पाता। एक डेवलपिंग प्लांट है, उसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए तो विकास नहीं होता। हमारे और आपके अंदर से भय निकालने के लिए एक प्रतीक उपासना का, शक्ति के बल है। मैं हिंदू हूं ऐसा नहीं कुछ और। पंडित मुखराम शर्मा मूल लखनऊ के हैं और परिचय लखनऊ के बहुत अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन दो जबरदस्त हुए हैं, लेखक में पंडित मुखराम शर्मा और शायरी में मूल बदाम के थे, रहते लखनऊ में शकील बदाम ने, और नौसाद, नौसाद तो मूल जो है लखनऊ का ही, पुराने भी बहुत लोग हैं, तो ये मूल लखनऊ के पंडित मुखराम शर्मा, जन्म हुआ बदायूं में इसलिए अपना नाम बदायूं रखे, रहे वो लखनऊ में, और नौसाद तो पूरा प्योर जो है लखनऊ का ही, मतलब उसे तो देखा जाए नवाब खानदान का है। तो पंडित मुखराम शर्मा से मुलाकात हुई, थोड़ा पुराना परिचय था। मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके आस्था की बात कर रहा हूँ, और जो लोग जानते हो जानते हैं, इसलिए सत को प्रकट करने में मैं डर गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, निंदा की दृष्टि से नहीं जानने के। मैंने कहा पंडित जी, गुरु महाराज की कृपा से, आप सबके शुभकामना से, काफ़ी मैंने हिंदू फिलॉसफी का, हिंदू दर्शन का, क्रियाकर्म का, वेदों का अध्ययन किया है, कहीं पर भी संतोषी माँ का मैंने जिक्र नहीं देखा। तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मेरे सामने प्रस्ताव लाया गया कि आप अपनी कल्पना से किसी देवी शक्ति का निर्माण कीजिए और उस पर हम फिल्म बनाए। तो स्वामी जी, मैं लेखक हूं, कल्पनाएं तो है ही मेरे पास, तो कल्पना से मैंने मन में एक संतोषी देवी का निर्माण किया, विचारों में, शब्दों में, तो शब्द का आकार फिर मूर्ति में आया, फिर फोटो पे आया। स्वामी जी, मैं खुद कभी संतोषी माँ का मंदिर न बनवाया न जाता हूँ, लेकिन लाखों लोगों की इतनी श्रद्धा हो गई है कि जो नहीं था वो हो गई, कितने संतोषी माँ के लोग पूजा कर, वो आपके आस्था की बात, इसलिए किसी का आस्था पर चोट नहीं पहुंचा, लेकिन समाज की मान्यताओं का किसी रूप में आप में अगर विश्वास और आस्था आ जाए। वैज्ञानिकों की बात करो, एकलव्य की बात करो, एकलव्य की कितनी जबरदस्त आस्था है, ये मूर्ति मेरे गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य जी की बात करो, तो एक आस्था रखने वाला एकलव्य कितना प्रवीण हो गया, सोचो विचार करो। साक्षात अर्जुन को दीक्षा शिक्षा देने वाला द्रोणाचार्य जी, और द्रोणाचार्य जी में आस्था रख करके एकलव्य आस्था से, आप लोग पढ़े लिखे जितने वैज्ञानिक खोज है वो आस्था का है, लेकिन आस्था के बल पर कितनी खोज हुई, कोई नई चीज नहीं बनाई गई। आपने कहानी सुना, आपने कहानी सुना कि भारत में परी चांद पे जाती ताती थी, वैज्ञानिकों ने सुना तो उसका व्यवहारिक रूप दे दिया, क्योंकि जो आप शब्द बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, तो वेदों में लिखा है, वही आज विज्ञान का। आप सुन रहे हैं वो तो ठीक है, आप देख रहे हैं वो भी ठीक है, आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपके मन में जो विचार या कल्पना के आधार पर जो विचार आ रहा है वो भी कहीं न कहीं अस्तित्व है, इसलिए बिना देखे बिना सुने बिना बोले भी उसका विचार आ रहा है। आप कहते हो मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, फिर भी विचार आता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कह दिया विश्व में ब्रह्मांड में वो चीज कहीं अस्तित्व में है, और पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व भी आपके पांच छह सात आठ फुट में है, चाहे पुत्र हो तो पुत्र, अगर आप डॉक्टर नहीं तो आपके शरीर में इतनी क्रिया प्रक्रिया चल रही है, उसमें कितनी आप जानते हैं? श्वास आप चला रहे हैं, चलो आंख तो चला रहे हैं, देखना है देखे नहीं बंद किया काम भी, लेकिन मैं कहता हूं श्वास आप चला रहे हैं क्यों चल रही है, इसकी क्या व्यवस्था है? आपके पास तर्क नहीं है, आंख चली गई तो आप जिंदा है, लेकिन आंख ठीक होते हुए भी श्वास चली जाए तो सब ये है व्यवस्था, ये तर्क नहीं कर सकते महाराज जी। हाथ चला गया, आंख चली गई, मैं जिंदा हूं, तो श्वास चली गई तो चली गई क्यों नहीं? एक बात बताओ, हाथ चले जाने के बाद जिंदा रहोगे? इसको देखा इसलिए विश्वास है, श्वास निकल जाने के बाद कोई जिंदा नहीं, इसलिए जानते हैं श्वास निकल जाएगी तो मर जाओ, जानते हैं, इसलिए उसमें तर्क नहीं है, जानना। तो ये जो प्रश्न उठा है उसकी गहराई में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जगत शुभ और अशुभ से चलेगा, खून और मजबूत से चलेगा, सर्जन और विसर्जन चलेगा, उगते सूरज डूबते सूरज से चलेगा, दिन से चलेगा, रात से चलेगा, सुबह होगी शाम होगी होगी, इसमें आपको तर्क लगाने कोई जरूरत नहीं, सुबह भी दोपहर भी शाम रात भी आएगी, पूनम पर चांद और अमावस्या पूरा गायब, ये व्यवस्था है प्रकृति की, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं। आपके कहने आप रात में डरते हैं, हे भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, रात जरा दो घंटे कर दो, भगत हो कि नहीं हो, रात दो घंटे की नहीं हो, वो व्यवस्था है, लेकिन निर्भयता पूर्वक रात बिताएं उसका उपाय है। इसलिए इन्हीं बातों को डॉक्टर राधाकृष्णन बड़े फिलासफर है, उसने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है एनालॉजी ऑफ लाइफ में, तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर शायद मैं तर्क से नहीं दे सकता, आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर ऐसा क्यों होता क्यों वही बात वाई हैपेंस हो, आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन टोटल को पूर्णता को स्वीकार करके चलोगे तो बेकार की बातों से बच करके अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता क्यों होता है? जो भाई मैं कह रहा हूं होता है तो उसमें क्यों को लगा टाइम क्यों बिगाड़ते, आज का दिन गया कल वापस नहीं आया, कल आएगा लेकिन ये तो नहीं वापस आएगा, तो बेकार की बातों में क्यों आप जाते? इसलिए ये जगत की रचना में हम अच्छे हैं फिर भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लोग हमारा विरोध करेंगे, ये प्रकृति का नियम है। अब जरा सोचो तो सही, और बड़े प्यार से कह रहा हूं, अगर आप प्रकृति को देखें ठंडी की व्यवस्था देखें गर्मी की व्यवस्था को देखें बरसात की व्यवस्था देखें, क्या ये सब आपके संकल्प से होता है? आप तो उपाय करते हैं कि ठंडी से बचो, भजन करके ठंडी नहीं भगा सकते, ठंडी से बचने का उपाय करते हैं, गर्मी से बचने का उपाय करते हैं, बरसात से बचने का उपाय करते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन यही कहते हैं, बहुत जबरदस्त फिलासफर, वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट वाइस चांसलर भी थे, तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता लेकिन 100 साल का एक उपाय बता सकता हूं कि हर परिस्थिति में तुम आनंद से आगे बढ़कर जी सकते हो, मैं बता सकता हूं, शायद सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा लेकिन आपकी समझ में नहीं, इन लोगों की बात बताया। अब ये देखो अपना हाथ देखिए, एक अपना हाथ देखिए, हाथ है वो इतना मुड़ेगा, वो अभ्यास की बात अलग है होगा, लेकिन ये देखिए इधर बाल होते हैं, इधर बाल क्यों नहीं होता, जा विचार कीजिए, नाक में बाल क्यों है, कान में क्यों बाल है। ते उपाय है कि दूसरी चीजों से बचने के लिए, ये उपाय परमात्मा, अगर आपके अंदर कीड़ी चली जाए तो माइक में चली जाए मुश्किल है, लेकिन बाल में रुक जाएगी, कान में नहीं जाए। ये कितनी व्यवस्थाएं हैं उसको समझिए। तो यही बात डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जगत में 100 बरस शांति से आनंद से कैसे जीना है वो मैं रास्ता बता सकता हूँ। अब आप हैं यहाँ पर, वो जो माया की बात बताऊं, जा मुझे बताइए आप, जो नहीं है उसका विचार कर ये माया, तो एक दर्शन लीजिए, फिलॉसफी लीजिए, आज आप हैं, ये वर्तमान है, आज आप हैं और कल अभी आपके हाथ में नहीं आया, तो जो नहीं है उसकी चिंता करना माया। कल अभी आपके हाथ में नहीं आया और मुझसे भी पूछा जाता है कल क्या हो, तो आप भी माया पूछ रहे हैं, मैं भी माया को उत्तर दे रहा हूं, बाकी कल ना मेरे हाथ में है और ना आपके। इसलिए बड़े प्यार से कहूं, ये माया का आधार समझने के बाद बड़े प्यार से कह रहा हूं, आप अगर मेरे से पूछें तो हमारे ऋषि मुनियों ने जबरदस्त हमें शक्ति दी है ज्ञान, आज भी मेरे से पूछे तो मैं बता दूंगा कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखाई पड़ेगा, कहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, आज की बात नहीं, ये कल परसों 10 साल के बाद का गारंटी दे दूंगा कि कहाँ दिखाई पड़ेगा, कहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या बात, ये जबरदस्त कर हमारे ऋषि मुनियों को देना। लेकिन मैं कल डॉक्टर बनूंगा स्वामी जी, कि इंजीनियर बनूं, क्या बनूंगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, इसका आधार कर्म पर। आज आप और हम यहां जो मिले हैं कई जन्मों का कर्म, आप जहां महाभारत तो पढ़िए, इतनी शक्ति तपस्या करके द्रोणाचार्य जी को भी प्राप्त है, अश्वत्थामा को प्राप्त है, मामा शकुनी को प्राप्त है, भीष्म पितामह को प्राप्त है। एक भीष्म पितामह की बात होता है, अब ये सोचा जा रहा है कि हाँ पिछले कर्म का क्या, अब भीष्म पितामह के इतिहास लिखा गया, व्यास जी ने लिख दिया, हमारा आपके इतिहास से नहीं लिखा। आप जानते हैं कि राग द्वेष ईर्ष्या ये पशुओं का गुण है, ये है क्यों का सवाल नहीं, जब हम आप गर्भ में आए पुत्र या पुत्री के रूप में, पहले लिक्विड थे, लार्वा बने, मेढक बने, छठे महीने वो वानर बने, सातवें में कुदरती वह कट के नर या नारी बने। मेरे पिता का खून एक विस्फोट हुआ, रचना के पीछे विस्फोट है, घर्षण, और मेरी माँ ने धारण किया, आगे कुदरती मेरा विकास हो रहा है, माँ को थोड़ी सावधानी रखनी है, गलत दवा न खाए, गलत न सोचे करे, लेकिन वहां पिता का धर्म पूरा हो गया। मां के संकल्प से कि मेरा बेटा जल्दी पैदा हो जाए, बात अच्छी है, लेकिन कुदरत अपना टाइम लेगी। अगर समय से पहले हम चाहेंगे तो बच्चा हमें नहीं मिलेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हम कितने अच्छे हैं, तपस्वी हैं, लेकिन वो अपना कुदरती 9 महीना पूरा करके अपने आप आ गया, उसकी व्यवस्था। तो देख लीजिए स्वामी जी, मेरे पिता तो आदमी थे, हाँ थे, लेकिन आपके पिता भी जब घर में आए थे तो वो भी 6 महीने बांध रहे, उनके पिता भी बांध रहे थे, उनके पिता भी बांध रहे। ऐसा नहीं कि आपके पिता, मेरे भी पिता, मेरे पिता सम थोड़े थे, गर्भ में जब आए तो वो भी उसी क्रम से चले जैसे मैं गर्भ में आया। लेकिन मिलेटी वालों का संस्कार अच्छा होता है, हम लोगों के जो संस्कार थोड़े अच्छे पड़े, माँ अच्छी कथा सुनती थी, देखती थी, करती थी, उसका पर अभिमन्य वाली बात किसी का भी, मेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं। लेकिन जो आप ये पूछे क्यों क्यों नहीं ये होता, तो हमारे आप में हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन में उत्क्रांति में भी कहा गया है, तुम 7वें महीने में नर का स्वरूप धारण करते हो। अब नर से नारायण कर्म से बन जाओ कि नारी से नारायणी बन जाओ, वो जन्म के बाद की बात है, लेकिन 7वें महीने तक की व्यवस्था जो है और जन्म तक की व्यवस्था वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं, इसके बाद आपके हाथ में। कर्म करके आप वानर बन जाइए, वानर न तो लगा है लेकिन वानर, या नारायण बन जाइए। कर्म करके आप नारी बनिए या नारायणी बनिए, ये स्वतंत्रता केवल हमें आपको मिली। अब यहां देख लीजिए आपका विज्ञान क्या कहता है, ये मानना है क्यों का सवाल नहीं। पशु में से निकलते निकलते हम वानर के बाद मेरे नारी बने। वानर कितना चंचल होता है, वानर कितनी नकल करता है, कितना शक्ति होता है, कितना सब कुछ वानर में इतने हैं कि अवगुण के जानता हूं, ये विज्ञान कहता है। अब फिर विज्ञान क्या कहता है, जो जहां से आया है उसका गुण लेकर है, क्यों का सवाल नहीं, गुण लेकर है। तो जब हम लड़ते झगड़ते हैं तो गुण किसका है, पशु का। इसलिए हमारे ऋषियों ने कह दिया कि इसको समझो, आहार निद्रा भय मैथुनम, क्या कितना साफ साफ हमारे ऋषियों ने कहा, आहार की खोज पशु अपने आप कर लेता है, आप भी कर लेते हो, नींद पशु को भी आती, हमें भी आती, और बाल बच्चों को गृह धर्म जिसे माना गया, हम धर्म बोले, पशुओं में धर्म नहीं है, व्यवस्था है, बाल बच्चों को कैसे जन्म देना जिसे शक्ति कहा जाता है, एक ज्ञान पशु को भी और हमें भी। लेकिन एक जबरदस्त विशेषता भगवान ने हमें आपको, हम जानवर में से निकल करके, पशुता में से निकल करके हम देव बन सकते हैं, ये गुण केवल हमारे और आप में, मतलब नर और नारी, बाकी पशु को कितना समझाइए। इसलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है, अच्छी बात किसी को समझाइए और नहीं माने तो पशु है, इसलिए पशु को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मानेगा ही। और उसका उदाहरण दिया गया किस से, इतना समझाया दुर्योधन को, इसलिए पशुपति नाथ का मतलब क्या होता है, पशु नाम है हमारी इंद्रियों का और इनका पति मन है, मन जिधर जाता है भागते हुए, और नाद हो गया आत्मा का। तो पशु इंद्रिया पति मन और पति को नाचने के लिए आत्मा की तरफ जब चलोगे तब ये ठीक रहेगा, बाकी मन तो पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। एक विचार दे, मन तो पशुओं की तरफ ले जाएगा, या देख लीजिए व्यवहार की बात, जो छल कपट की बात आई, मन को 420 माना गया, माना गया क्यों का सवाल नहीं। अभी आपको लेना हो दुकान की बात बताओ तो कहते तो कम तौलता है, ज्यादा लेने की कोशिश करते हो, लेकिन दो दिन बाद आपको देना हो तो आप भी वही करते हैं, आप कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते, क्यों करते हैं? ये मन कहलाता है, इसकी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। रावण के पास क्या कमी थी, लेकिन आत्मा की तरफ नहीं था, जगत की तरफ था, इसलिए सब कुछ रहते हुए भी कभी उसको संतोष नहीं हुआ। दुर्योधन से 5 गांव मांगा गया, किसने मांगा, कौन सी बड़ी बात थी, शांति से रह सकता था, लेकिन उनका था सुई के नोक के बराबर नहीं। ये हमारा आपका जो धरती पर आना है, ये कई जन्मों के पीछे अगर दृष्टि डालोगे तो पता चलेगा। मेरा ही भाई भाई के रूप में, पति पत्नी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, एक मानता एक नहीं मानता, सब कर्मों के साथ। भीष्म पितामह इतने महान, जिंदगी में कभी उन्होंने गलत नहीं किया, जो प्रतिज्ञा की उसका पालन किया। लेकिन जहां देखिए पिछला इतिहास, काशी नरेश अम्बा अम्बे बालिका को लाए, उस समय रिवाज के अनुसार तीनों को पति देना चाहिए, चित विचित को दिया, अम्बा रह गई, सारा इतिहास आप जानते हैं। तो एक इच्छा मृत्यु वाला इतना तप किया कि पिता के आशीर्वाद से, संतन के आशीर्वाद से इच्छा मृत्यु का मालिक बना, लेकिन फिर भी एक कर्म ऐसा है कि अम्बा के प्रति न्याय नहीं किया तो अम्बा ही उनके मृत्यु का कारण बनी, जो शिखंडी के रूप में आते हैं। ये निमित्त और थोड़ा सा बताऊं, अगर आप गहराई से महाभारत पढ़े तो वो नियम था कि आमंत्रण देने पर ही जाना चाहिए, और हस्तिनापुर को काशी नरेश ने आमंत्रण जो है नहीं दिया, तो पहले तो वही मर्यादा टूटी। आप पढ़िए महाभारत। मन क्या था, जिम्मेदारी थी, लेकिन वहां पर अगर अंतिम बाण सैया का अंतिम विचार भीष्म पितामह किसके पूछने पर जो कहा उसको पकड़ी, भीष्म पितामह महान बहुत जबरदस्त त्याग किया, कोई ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन जो कहा है उसको आप जा समझिए। हसनापुर को आमंत्रण नहीं था, अपने हिसाब से गए, बल के बल पे लाए, नहीं ये आसन सुना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ है वो आप जानते हैं, मैं ये मेरा धर्म है, धर्म के नाम से अम्बा अम्बे बालिका को लाए। लेकिन जब प्रश्न उठा कहते नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा की, फिर लाए क्यों? अब ये सब समझते जाइए, क्यों का सवाल नहीं, मन की जितनी अनुकूलता थी, ये मन की बात है, मन की जितनी अनुकूलता थी वो स्वीकार किया, और ये प्रतिज्ञा थी प्रतिकूलता है तो नहीं स्वीकार किया। अब यही बात जो थोड़ा प्रेम से कह दूं, शादी के बाद अनुकूलता है मेरी बेटी की गोद में बेटा आया, वही शादी के पहले आया, आया बेटा लेकिन प्रतिकूलता है, तो ये समाज इतना भयभीत है कि डर के मारे प्रतिकूलता को स्वीकार नहीं करता। बाकी बेटा तो वही है, हम आप भी अनुकूलता प्रतिकूलता में चल रहे हैं। अनुकूलता होती है, कितने मेरे पास ऐसे प्रमाण है, आज भी महाराज जी ना पैदा हुआ होता तो अच्छा था, क्या बताऊं। पहले बच्चे के लिए आप रोते हो और जब प्रतिकूलता आती है तो ना पैदा हुआ होता तो अच्छा था, ये क्या है, वो आपकी प्रतिकूलता है, लेकिन उसी को स्वीकार कर लीजिए तो मैं भीष्म पितामह अंतिम मान, ये समझने लायक। किसने पूछा बाण सैया पर जो महाभाग पर है, हे पितामह अपने जीवन का कुछ अनुभव सुनाइए, हे पितामह अपने जीवन का कुछ अनुभव सुनाइए, मैं इतना शक्तिमान था, बाल ब्रह्मचारी था, पिता का आशीर्वाद था, फिर भी केशव कर्म किसी को नहीं छोड़ता, हसनापुर से लेकर आज तक, चाहे द्रौपदी के चिरहरण की बात है कि गदायुद्ध की बात है, लेकिन कहीं न कहीं आप जा देखिए, हे केशव कहीं न कहीं मेरे से भी अपराध हो गया है, और उस अपराध का फल तो भोगने पड़ेगा। अब ये चाहे कल्पना, लेकिन जब सोचिए तो सही, इतना जबरदस्त तपस्वी, इच्छा मृत्यु का मालिक, लेकिन फिर भी वानसैया पर आना पड़ा, वानसैया दुखों की सैया। हम आप भीष्म पितामह का तपस्या नहीं किया, हमारे आप पर पिता की किसी तरह से इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं प्राप्त है, ना आपके पिता ने आपको वरदान दिया, ना मेरे पिता ने मुझे दिया, लायक बनाने की कोशिश की आपके पिता ने मेरे पिता ने, पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, गंगा पुत्र हैं, आठवें वसु हैं, सिद्धियों के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझसे भी अपराध हुआ है, उस अपराध के फलस्वरूप मुझे वानसैया पर, वानसैया क्या दुख। तो मैं आपसे पूछता हूं, आखिर जो आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आज जो आपको दुख है कहीं न कहीं किसी जन्म में आपका भी अपराध है, चाहे महात्मा बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, जो कुछ बन जाओ, लेकिन पिछले जन्म का इतिहास तो व्यास जी ने लिख दिया, हमारे जन्म का नहीं लिखा, लेकिन माया इतनी प्रबल है, जब अनुकूलता आती है, अनुकूलता में जब सुख आता है तो कितने नियम हम तोड़ देते हैं, प्रतिकूलता में नियम है लेकिन वो दुख दे रहे हैं, इसलिए हम नियम का पालन नहीं करते, चाहे वो सामाजिक बात हो चाहे कोई भी बात। तो इस जगत की रचना में छल कपट रहेगा, दुर्योधन छल कपट का एक आकार, अर्जुन पवित्रता शुद्धता का एक आकार, राम पवित्रता शुद्धता के एक चिन्ह एक प्रतीक है, रावण बुराइयों का एक प्रतीक है एक प्रतिबिंब है। इसलिए विज्ञान कहता है कि मैं सारी दुनिया को एक सूत्र में नहीं बांध सकता, लेकिन आपने देखा भारत की कहानियों से कि विनाश रावण का हुआ जो छल कपट करता था, जो छल कपट नहीं करता था केवल अपने धर्म का पालन करता था, वो परेशान हुआ, तकलीफें आई, गई हुई अयोध्या फिर वापस आ गई, सोने की लंका क्यों गई? आपने जो छल कपट से, अब देखिए सूत्र, आपने जो छल कपट से कमाया वो चीज आपके पास नहीं रहेगी, वो भी कोई न कोई निमित्त आपको छोड़कर चली जाएगी। दुर्योधन का देखिए महाभारत पढ़िए, सिंहासन लेने के लिए कितना छल कपट किया, लेकिन गदा युद्ध में जब रणभूमि में पड़ा हुआ है उस समय महाभारत पढ़िए, कोई उसके पास नहीं। तो छल कपट का जो परिणाम वो है, छल कपट नहीं किए, सहन किए, उनको फिर हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में ले गया। तो इंद्रवदन जी, डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम अपने कुछ स्वार्थ के लिए इतने अंधे बन जाते हैं कि आज कल लो कल देखा जाएगा, और आज की जो गलती है वो कल आएगी उसे आप भूल जाते हैं। आज का जो गर्व है कल प्रकट होगा, लेकिन आप भूल जाते हैं, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, यही माया है। आप जानते हैं फिर मन को बहला रहे, जब होगा तब देखा जाएगा, हो गया। जिसका बीज सुख या दुख आप बो रहे हैं लौटकर आपके पास आएंगे, जानते हुए भी आप नहीं चल रहे हैं तो आप अपना छल कपट कर रहे हैं। इतना छल कपट करने वाला रावण के पास क्या, विराट रूप दिखा करके आप जानते हैं। दुर्योधन एक बार बंदी बनाना चाह, बना पाया, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, वो अपने छल कपट को ही सर्वोपरि कि मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तो आज यही सीखना है कि दुनिया में छल कपट रहेगा, ये कोई मिटा नहीं सकता, चाहे राम का समय था ये विज्ञान का था, चाहे कृष्ण का समय था, बुद्ध का, महावीर का, सहजानंद जी का, कि कबीर का, कि सूरदास का, कि आज और आने वाले है, उसे देखो समझो। जो नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं, उसका विचार मत करो। आपकी जो योग्यता है वो सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन केवल इसका एक जन्म से संबंध नहीं है। जैसे एक एक दिन करके आप मास्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर एक दिन में बने, कितनी पढ़ाई किया, आप इंजीनियर एक दिन में बने, आज आम का बगीचा एक दिन में आया, सफाई करनी पड़ी, प्लांटेशन करना पड़ा, खातर पानी देना पड़ा, रखवाली करनी पड़ी, एक दिन में पेड़ बना। तो आज आप जो मनुष्य बने हैं, गर्भ में आप लिक्विड थे, लार्वा थे, मेढक थे, वानर, इसी तरह से आज जो ये आप मनुष्य बने हैं, किसी जन्म में ऐसे थे, किसी जन्म में ऐसे थे, किसी जन्म में ऐसे थे, जैसे कुदरती विकास से सातवें महीने में नर या नारी बने, ऐसे कुदरती विकास से कर्म आते 84 लाख के उंगलियों में से निकलते हुए आप, अब आपकी जिम्मेदारी आई कि आप किस पर्यावरण में रहें जन्म के बाद, शुभ में कि अशुभ में। अगर यही महाभारत आप पढ़िए तो सपनी बुद्धि बिगाड़ रहा है धृतराष्ट्र की, और अच्छी तरह धृतराष्ट्र कहता है, हे सपनी मेरी बुद्धि को मलिन न करो। और उसका इशारा यही है कि जन्म से हम आप मलिन नहीं होते। ठीक है, एक व्यवस्था थी कि अब देखो राजा नहीं बना गए, लेकिन जब पांडु गया है उस समय की व्यवस्था थी कि चक्रवर्ती राजा बन जाने के बाद थोड़े दिन विश्राम करना पड़ता है, तो आज भी व्यवस्था है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विश्राम करने के लिए जाता है तो दूसरे को अपनी जगह रख के जाता है। तो अगर आप महाभारत पढ़े तो पांडु ने थोड़े दिन के लिए विश्राम करने के लिए चक्रवर्ती राजा होने के बाद कहा, मेरे भाई बड़े भाई, जब तक मैं आराम करूंगा तब राज का संचालन आप करें, और अपना मुकुट किसको दे दिया? धृतराष्ट्र। और ये शकुनी गंधारी बहुत अच्छी है, अब देखिए नहीं उनके आते ही मुकुट वापस कर। और महाभारत में शकुनी अपनी लालच कि मेरा जीजा जी बुरा मानिए, अगर इसके हाथ में पूरा हस्तिनापुर आ गया तो मेरी भी चलिए तो अंधा है जैसा मैं चाहूंगा वैसा चले। ये अंधे का फायदा उठाने के लिए उसने कहा, कितना सुंदर मुकुट है, कितना अच्छा है, पढ़िए। और इस तरह से बहकाया कि धीरे धीरे जो गंधारी पत्नी कहती थी उसकी भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं। और इसमें स्वार्थ किसका था? शकुनी का। स्वार्थ किसका है? के तो अंधा है और मैं इसका साला हूं। और आज भी कितने बनवाई को साले ही बर्बाद कर रहे हैं, फैक्ट्री में सब जगह आते हैं। मैंने कहा भाई को क्यों नहीं रखा? कहा पत्नी के दबाव से, गंधारी का तो दबाव था रखो ही नहीं। और आज तो दबाव होता है कि भाई को भेज दो लंका में और साले को रखो, हाथ जोड़ के करता हूं, आते ही मेरे पास बातें तो वही करता। तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं और इशारा ये कमजोर क्षणों में अगर किसी को पद मिल जाए, किसी को पैसा मिल जाए, किसी को शक्ति मिल जाए तो जो कमजोरी को नहीं छिपा सकता वो सुख को भी नहीं समझ सकता, जो दुख को नहीं संभाल सकता वो सुख को भी नहीं समझ सकता। आप पढ़िए, मैं गंधारी ने बहुत कुछ कहा, बड़े अच्छे कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, मनोवैज्ञानिक, इतना अच्छा राज गंधार का था, अच्छा राज छोड़ करके 24 घंटे क्यों सपनी रहता था? इसीलिए कि छोटे पर राज नहीं करना, वो तो मेरा है, ये भी मेरे हाथ में आ जाए तो, और हाथ में कैसे आएगा ये अंदाजा राजा इसको आंख में दिखाऊंगा या विचार। इसलिए पर्यावरण में चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो कि नातेदार हो, लेकिन बहुत समझ के चलिए। लोग आपको सलाह देंगे लेकिन अपना स्वार्थ देखकर। इसलिए भीष्म पितामह की अंतिम बात कि हे केशव, जिम्मेदारी निभाने में कभी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये मेरी प्रतिज्ञा में ही यह महाभारत किया, नहीं तो मैं राज करता और जो लायक होता उसको दे देता। इसलिए जिम्मेदार, आप सब जिम्मेदार हैं, पता नहीं कल क्या अपनी व्यवस्था दे, इसलिए कभी आप कोई प्रतिज्ञा नहीं करना। बस आज का दिन, आज सुबह उठते ही हे प्रभु आज अच्छा सुनूं, आज अच्छा देखूं, आज अच्छा बोलूं, अच्छी जगह जाऊं और दूसरों के छल कपट को समझ करके उसमें से रास्ता निकालूं, ना कि लालच में आ करके मैं भी उसमें बह जाऊं। अब जा सोचो तो सही, बुरा न मानिएगा, कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी एक महात्मा था, ऐसा था, क्या बात है महाराज जी, उसने 100 का 200 नोट बनाया, 200 को 400 बनाया और मुझे कहा कि तू ला डबल कर दूं। तो मैंने कहा जब डबल की बात किया तो उसमें कितना कमीशन मेरे को सोचा था देने का, अभी लेके भाग गया तो आपकी लालच, आप पढ़े लिखे हैं, एक डबल करने वाला आपके घर में कैसे आता, वो अपना डबल करके क्यों नहीं जाता? या विचार तो करो। और अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि डबल के चक्कर में फंसे, सस्ते सोना खरीदने के चक्कर में बाद में होता है ये तो इसलिए जिम्मेदारी निभाते समय जागृत रहो और विवेक को जागृत रखो, कहीं मुझे छल तो नहीं कोई कर रहा है, कपट तो नहीं कर रहा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा है। फिर से मैं कहता हूं क्रियात्मन वेद के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, दर्शन के आधार पर, चाहे समय कोई भी था है या रहेगा, लेकिन शुभ अशुभ दोनों तत्व रहेंगे। नाम बदलता रहेगा, कोई राम की तरह रहेगा, नाम बदलता रहेगा, कोई रावण की तरह रहेगा, नाम बदलता रहेगा, कोई सीता की तरह, कोई सुपर्णा की तरह, नाम बदलता रहेगा, कोई कृष्ण की तरह, कोई कंस की तरह, नाम बदलता रहेगा, व्यवस्था बदलती रहेगी, लेकिन पात्र के नाम बदल बदल के वही रहेंगे, कोई अर्जुन की तरह और कोई कौरव की तरह, दुर्योधन की तरह। धोबी भी रहेगा। आप देखिए रामायण काल में रावण की बात तो ठीक है, धोबी भी तो है, मंथरा भी तो है। आप अच्छे बुरे दोनों देखिए, जन्म देने वाली कौशल्या है तो वनवास देने वाली कैकेयी भी तो है घर की। ये सब चलता रहेगा, पहले भी था, आज भी अब रहेगा। आइए हम आप विवेक से, उपाय से बच जाए, किसी तरह किसी के लालच में ना आए, किसी के लेने कोशिश में करें, अपने सुख ले किसी को धोखा न दे कि ये सुखी हो जाएगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, ये राज पर अगर धृतराष्ट्र बैठ गया तो मेरा संचालन होगा, ये सब बातें कोई और करने, कोई सुपर पावर है, इसलिए आप ढंग से चलिए। और सबसे बड़ी बात यही आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके हाथ में है बचने का उपाय, कैसे बचें वही आपको बताना। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। दुनिया तो थी है और रहेगी, ये दुर्योधन था है और रहेगा, इस तत्व को तुम खत्म नहीं कर सकते। विज्ञान कहता है जो पहले था आज भी है और रहेगा, जो चीज एक बार जन्म लेती है उसका विनाश नाश कभी नहीं होता, नाम बदल बदल के आते रहेंगे। तो आज हमारे आपके सामने भी अगर हम जिम्मेदार हैं तो कोई न कोई दुर्योधन होगा, कोई न कोई सपनी भी गलत सलाह देने वाला होगा, कोई न कोई गंधारी अच्छी सलाह देने वाली होगी, लेकिन विवेक को नहीं जानते। कोई न कोई कर्ण भी होगा इस समाज में, कर्ण का अगर मान सम्मान होता जा विचार तो कीजिए। एक छोटी सी बात बताऊं, जब कुंती गई है तो वहां पर एक बड़ी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बात है, माँ भरी दबाव में जब सूत पुत्र बोला गया तो तू तो जानती थी कि मैं किसका पुत्र हूं, तो इतना तो कह देती कि मैं जानती हूं सूत पुत्र नहीं है, लेकिन माँ तूने सोचा कि मैं जब कहूंगी कि मैं जानती हूं कि सूत पुत्र नहीं है तो लोग पूछेंगे फिर किसका पुत्र है। उसका जवाब तेरे पास था लेकिन समाज से डर गई थी, तू विवश हो गई। अच्छा माँ ये बता, भरी सभा में विवश होकर के ही नहीं सत्य बताया ना कहा, तो आज भी माँ तू विवश होकर आई है, पता चला है कि मैं कितना बलवान हूं, प्रतिज्ञा किया कि पांडवों को मैं लाश में डाल दूंगा, पता चला ना, तभी तो आई ना। तो उस दिन जानती थी, विवश होकर नहीं बोली, और आज भी विवश होकर आई है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो तो मेरी माँ है। लेकिन माँ एक दिन का भी दूध पिलाती, आप पढ़िए, माँ तू पैदा होते मुझे कब छोड़ा, कहा एक घंटे में, तो कहा एक बार भी दूध पिलाई होती तो शायद मुझे पता लग जाता कि मेरी माँ कौन है। तूने तो एक दिन का भी दूध मुझे, दूध किसने पिलाया, अब समझ जाइए। तो माँ अगर तू विवश होकर आई है तो मैं पूछता, अब विवश होकर जवाब न दे, पूछे माँ बात पड़ी, अब विवश होकर जवाब न दे, स्वस्थ हो जा, ये मेरा जवाब विवश होकर मत दे, तू स्वस्थ हो जा। माँ तू स्वस्थ है? हाँ बेटा। माँ तेरे कितने पुत्र? कहा बेटा पांच। माँ थोड़ी देर और रुक जा, स्वस्थ होकर जवाब दे। माँ तेरे कितने पुत्र? कहा पांच। अब एक बार और पूछता हूं, माँ तेरे कितने पुत्र? कहा पांच। तो अभी अभी तो मुझे मिला के छह हुए। हाँ बेटा हाँ। माँ तूने यहां छह पुत्र तो कह दिया, लेकिन अंदर के संस्कार में पांच ही है, छह नहीं है। तो कल अर्जुन और कर्ण में लड़ाई होगी, मैं वचन देता हूं अगर कर्ण मारा गया तो तेरे पास रहेंगे और अर्जुन मारा गया तो भी तेरे पास रहेंगे। अब इसका अर्थ क्या कि हम सत्य जानते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बोलते, लेकिन अपनी सुरक्षा का जब खतरा होता है तो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान है। उसने कहा आप महाभारत पढ़िए, मैं सबके सामने स्वीकार करती हूं तू जैस कौनते है और ये मुकुट तेरे सिर पर आएगा। मैं भरी सभा में सत्य को नहीं स्वीकार किया और आज कहती चल मेरे साथ बेटा, भरी सभा में मुकुट तेरे और तू कौनते है। ये कई बार हमारी आपकी हालत यही होती कहानी, शुरू में सत्य को स्वीकार कर लेते तो आज हालत ही क्यों होती। कहे मां तेरा देश पुत्र होने के नाते सिंहासन का हक मुझे है, लेकिन मां केवल एक घंटे तेरे पास रहा हूं, आज तक मैं दुर्योधन के पास रहा, दुर्योधन ने मुझे उठा के कहां से कहां किया। मां मैं चल सकता, ये युद्ध भी रोक सकता, न दुर्योधन मरेगा न हमारे कोई और भाई, लेकिन मां दुर्योधन का मेरे ऊपर इतना उपकार है, तू मेरे को मुकुट देगी तो जैसे तूने एक घंटे मुझे भेज दिया वैसे आधे घंटे में ये मुकुट ये दुर्योधन ही ले लेगा और मैं ना नहीं बोल सकती, उसका इतना उपकार है। और मां ये मुकुट दुर्योधन के सिर पे गया तो कभी न्याय की, इसलिए मां जो हो रहा है होने दो, अब मुकुट भाग में जिसके होगा उसको मिलेगा लेकिन मुझे नहीं। तो कितने विवेक की बात किया कि मुकुट मैं ले सकता हूं लेकिन ये मुकुट मेरे सिर पर रहने वाला, ये जो मेरे पर क्यों को लालची है जानता है, सब समझ गए। इसलिए श्री इंद्रवर्धन जी डॉक्टर साहब आइए हम आप बचें शकुनी से, धोबी से, कंस से, दुर्योधन से, और बचने के उपाय मैं बताऊंगा। इन लोगों के बातों में चक्कर में कभी अपने को आने की जरूरत, जब भी कोई अपना धर्म क्या, बस अपना धर्म देखोगे अपने विवेक के जागृत करोगे तो ये सब रहेंगे, लेकिन हमारा आपका कोई विनाश होने वाला नहीं। ये हमें तकलीफ में डालेंगे दुख देंगे लेकिन विजय अपनी होगी, सफलता अपने को मिलेगी और इनका विनाश होगा। तो छल कपट था है और रहेगा, आइए हम आप बचें। और बचने का उपाय है कि विवेक सुन करके देख करके लालच मत आओ, अपनी मर्यादा के बाहर मत जाओ, किसी को धोखा देने की कोशिश कभी साफ करते हैं, भले तुम्हें कोई धोखा दे दे उसका नुकसान नहीं है, लेकिन तुम जब धोखा दोगे तो बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। आइए हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी छल कपट नहीं गए, फिर भी ऐसा हुआ तो उससे बुद्धि जागृत करके बच जाए। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान देना, छल कपट कभी खत्म होने वाला नहीं है, बचने का उपाय बताया और आइए हम आप बचे 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 वही उपाय बताए। हरि ओम
सदगुरु।